ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, दूसरा पहला अध्याय और दूसरा श्लोक। ये आवाज क्या आ रही है? फ्रिज की है शायद। धर्मा प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेदयम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तात्रयोनुन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिस्ततक्षणात्। ये भागवतम का दूसरा श्लोक है और भागवतम के पहले तीन श्लोकों में व्यासदेव जी ने सारे सिद्धांतों की चर्चा कर दी। सारी हमारी जो फिलॉसफी है अचिंत्य भेद अभेद या पूरा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत, वो भागवतम के पहले तीन श्लोकों में है। जिस प्रकार भगवद गीता के दसवें अध्याय के आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें श्लोक, चार श्लोकों में पूरी गीता है, या जिस प्रकार चैतन्य चरितमृता के आदि लीला के पहले 14 श्लोकों में पूरी चैतन्य चरितमृता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के पहले तीन श्लोकों में पूरी भागवतम है। तो पहले श्लोक में हमने चर्चा की कल कि भगवान के बारे में बता रहे व्यासदेव जी, और अब दूसरे श्लोक में व्यासदेव वो तरीका बता रहे हैं किस तरह भगवान की प्राप्ति होती है। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि पहले श्लोक में संबंध और दूसरे श्लोक में अभिधेय, और कल हम तीसरा श्लोक कर लेंगे या शाम को। तीसरे श्लोक में बता रहे हैं फल, कि भगवान को प्राप्त करने का फल क्या है, क्या मिलेगा, तो उसको कहते हैं प्रयोजन, लक्ष्य। या यूं कह लीजिए कि पहले श्लोक में व्यासदेव जी ने उसको कहते हैं अविरोध। अगर क्योंकि भागवतम वेदांत सूत्र का प्राकृत भाष्य है, वेदांत सूत्र का भाष्य महाप्रभु ने बोला, तो चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि वेदांत, हर संप्रदाय को वेदांत सूत्र पे भाष्य लिखना होता है तब वो संप्रदाय को मानी जाती है। जैसे शंकराचार्य की संप्रदाय में शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा वेदांत सूत्र पे, इसको कहते हैं शंकरा भाष्य। रामानुज संप्रदाय में रामानुजाचार्य ने भाष्य लिखा वेदांत सूत्र पे, इसको कहते हैं श्री भाष्य। मध्वाचार्य ने भाष्य लिखा वेदांत सूत्र पे, जिसको कहते हैं अनुभाष्य, अनुभाष्य। और निम्बार्काचार्य ने भी वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा है, जिसका नाम है पारिजात सौरभ। वल्लभाचार्य ने भी लिखा है वेदांत सूत्र पर भाष्य, जिसका नाम फिर से अनुभाष्य। तो सारे संप्रदाय के आचार्यों ने, श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुजाचार्य श्री भाष्य, कुमार संप्रदाय निम्बार्काचार्य पारिजात सौरभ, मध्वा संप्रदाय मध्वाचार्य अनुभाष्य, और रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य अनुभाष्य, सबने भाष्य लिखे। मगर चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में, चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा कि आपने, आपकी संप्रदाय है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, मगर आपने कोई भाष्य नहीं लिखा, महाप्रभु ने कहा नहीं, भागवतम ही प्राकृत, भागवतम ही भाष्य है वेदांत सूत्र का, यही भाष्य। मगर उसके बाद खैर बलदेव विद्याभूषण जी ने भी वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा है, हमारी संप्रदाय के जो आचार्य हैं जिसका नाम है, उस वेदांत सूत्र के भाष्य का नाम है गोविंद भाष्य। तो मैं बता रहा था कि मैं समझा रहा था कि क्योंकि भागवतम वेदांत सूत्र का भाष्य है, इसलिए वेदांत सूत्र के जो चार अध्याय हैं, वेदांत सूत्र के चार अध्याय हैं, और उन अध्यायों का पहला अध्याय का नाम है अविरोध, दूसरे अध्याय का नाम है समन्वय, तीसरे अध्याय का नाम है साधना, चौथे का फल, पहले का अविरोध, दूसरे का समन्वय, तीसरे का साधना और चौथे का फल। तो पहले दो अध्याय में व्यासदेव जी स्थापित कर रहे हैं कि भगवान कौन है, अविरोध और समन्वय में। तीसरे अध्याय में साधना क्या है, ब्रह्म को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसको प्राप्त करने की, और चौथे अध्याय में भगवान को प्राप्त करने का फल क्या है। अगर उस दृष्टि से देखें तो भागवतम का पहला श्लोक पहले दो अध्याय वेदांत सूत्र के, उनका सार, दूसरे अध्याय का सार है दूसरा श्लोक, तीसरे अध्याय का आधार है तीसरा श्लोक, सॉरी हरे कृष्ण, तीसरे अध्याय का सार है दूसरा श्लोक और चौथे अध्याय का सार है तीसरा श्लोक भागवतम का। तो इस श्लोक में जो दूसरा श्लोक है इसमें अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि दूसरा श्लोक क्या है। तो दूसरा श्लोक जैसे हमने पढ़ा, दूसरा श्लोक है साधना, या दूसरा श्लोक बात कर रहा है अविधेय की या तरीके की कि कैसे भगवान प्राप्त होंगे। तो उस पर चर्चा करते हुए व्यासदेव जी लिख रहे हैं कि धर्मा प्रोहजिता कहित वत्र, सबसे पहले भगवान की प्राप्ति के लिए व्यासदेव जी उन सारे साधनों, कई साधन हैं इस संसार में, मगर उन सारे साधनों को व्यासदेव कह रहे हैं कि वो चीटिंग है, कैतवोत्र, जो भी साधन लोग समझते हैं भगवान को प्राप्त करने का, तपस्वी लोग, तपस्या, ज्ञानी लोग ज्ञान से समझते हैं, कर्मकांडी लोग सोचते हैं कर्म करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, या दान करने से या पुण्य करने से, मगर व्यासदेव कह रहे धर्म प्रोजित हो कैतवत्र, ये सारे चीटिंग रिलीजन है। कैतव धर्म, कैतव धर्म के मतलब समझते हैं ना, प्रोजहित कैतव धर्म। तो धर्म क्या है ये नहीं बता रहे पहले, धर्म मतलब भगवान को प्राप्त करने का रास्ता, ये समझना चाहिए। धर्म मतलब ये होता है, तो जहां हम भगवान को प्राप्त करने की बात करते हैं तो बात आती है धर्म की, मगर धर्म है क्या वो बहुत बृहत विषय है और बहुत ही कठिन है जानना। हमें पता है धर्म मतलब भक्ति और भक्ति मतलब धर्म, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि धर्म आत्मा की स्वाभाविक क्रिया है, वो धर्म है, धर्म को इस तरह परिभाषा की जाती है। और वो भक्ति है, और क्योंकि धर्म भक्ति है इसलिए पहले भक्ति की स्थापना करने से पहले व्यासदेव जी बता रहे हैं कि उन सारी चीजों को छोड़ो जो भक्ति नहीं है, वो चीटिंग है, चीटिंग है। वो तपस्या, तपस्वियों की तपस्या, ज्ञानियों का ज्ञान, कर्मियों का कर्म, उससे कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तो उसको सब चीटिंग रिलीजन कह रहे हैं। और व्यासदेव यहां पे कह रहे हैं प्रोजितो कैतवत्र, प्र शब्द लगा रहे हैं, तो शास्त्रों में लिखा है कि प्र शब्द क्यों लगा रहे हैं, प्रोजहित, प्रोजित मतलब होता है कि छोड़ दो। तो व्यासदेव कह रहे हैं कि पूरी तरह छोड़ दो गलत धर्मों को, पूरी तरह छोड़ दो। क्यों कह रहे हैं ये, क्यों नहीं कह रहे कि छोड़ दो गलत धर्मों को, इसमें कुछ मतलब होना चाहिए अगर वो कह रहे हैं पूरी तरह छोड़ दो गलत धर्मों को, तो आप सोचोगे कि इसमें क्या मतलब है, वो बस कह रहे हैं पूरी तरह छोड़ दो, मगर कुछ मतलब होता है उसका। पूरी तरह छोड़ने का मतलब है कि वो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा धर्म भी छोड़ दो जिसका लक्ष्य मोक्ष है, ऐसी साधना जिसका लक्ष्य मोक्ष है वो भी छोड़ दो, साधना वो करो जिसका लक्ष्य केवल भ्रम है, कृष्ण है बस, और वह भक्ति शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा ऐसा धर्म छोड़ दो जिसमें केवल मिश्रित भक्ति भी होती है, समझ लो। तो भगवान को प्राप्त करने का रास्ता भक्ति है, तो कह रहे हैं कि जो भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं जैसे तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, दान, उनको तो छोड़ ही दो, मगर भक्ति में भी जब करोगे तो अशुद्ध भक्ति भी छोड़ दो। केवल शुद्ध भक्ति से ही कृष्णा प्राप्त होते हैं, बिना भक्ति के तो कभी प्राप्त नहीं हो सकते, वो रास्ते तो छोड़ देने चाहिए। जैसे तंत्र, जैसे इतने सारे लोग हैं, जैसे आप देखो ये आपके अघोरी नाथ संप्रदाय, तंत्र, तांत्रिक लोग, मायावादी, शैवाइट, इतने सारे लोग हैं जो अपना अपना रास्ता बताते हैं, नहीं कि ऐसे कर लो भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसे कर लो भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसे कर लो, सब छोड़ दो। और जब भक्ति करना शुरू करोगे तो अशुद्ध भक्ति भी छोड़ो, शुद्ध भक्ति करनी है। शुद्ध भक्ति मैंने क्या बताया था, क्या होती है शुद्ध भक्ति? शुद्ध भक्ति क्या है वो तो चलो सही है, शुद्ध भक्त किसको कहते हैं, जिसका लक्ष्य शुद्ध हो और प्रयास शुद्ध हो, प्रयास ठीक से कर रहा है, जरूरी नहीं उसका हृदय शुद्ध हो। शुद्ध भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमारा हृदय शुद्ध होना तब शुद्ध भक्ति होगी, हमें परमहंस बन जाएंगे, नहीं। शुद्ध भक्ति का मतलब है कि हमारा प्रयास शुद्ध होना चाहिए और लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए, तो वो शुद्ध भक्ति है। तो शुद्ध भक्ति करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, नहीं? शुद्ध भक्ति करने से हृदय शुद्ध होता है। जिस प्रकार अगर आप पानी लोगे, अगर मान लीजिए जमीन गंदी है, अगर आप शुद्ध पानी लोगे और उससे जमीन पर डालोगे तो जमीन साफ हो जाएगी, अगर गंदा पानी लोगे तो और गंदी हो जाएगी, नहीं? तो अगर हम अशुद्ध भक्ति करेंगे तो हृदय साफ होने की बजाय और अशुद्ध हो जाएगा। तो ध्यान से भक्ति करो, ध्यान से, अशुद्ध भक्ति मत करो, शुद्ध भक्ति करो, वरना जहां हृदय साफ करने पर चले हम और गंदा हो जाएगा। तो अशुद्ध भक्ति क्या है, जिसका प्रयास शुद्ध है। जो अब बात आ गई, प्रयास शुद्ध क्या है, मतलब जो अपना आनंद छोड़ने का प्रयास कर रहा है और भगवान को आनंद देने का प्रयास कर रहा है, ये शुद्ध प्रयास, इसका शुद्ध लक्ष्य है। केवल कृष्ण चाहता है, वो कृष्ण का आनंद चाहता है और कुछ नहीं। तो वो प्रोजित कहते पत्र, तो पहले व्यासदेव जी ये समझा रहे हैं शुद्ध भक्ति करो, पहले सारी गलत चीजें हटा रहे हैं, साधना में अलग अलग साधना हटा रहे हैं। विधान सूत्र भी ऐसी चलता है, अगर विधान सूत्र का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, वो साधना पद साधना अध्याय, तो उसमें भी पहले गलत गलत रास्ते को हटाकर सही रास्ते भक्ति पे स्थापना कर रहे हैं। अब भक्ति है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो कल तो पहले श्लोक में भागवतम के भगवान के बारे में चर्चा है, दूसरे श्लोक में भक्ति, और तीसरे श्लोक में है भागवतम के प्रेम, कृष्णा प्रेम। तो संबंध, अविधेय, प्रयोजन। तो भक्ति की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का रास्ता क्या है, भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति की चर्चा करेंगे, शुद्ध भक्ति क्या है वो पता लगना जरूरी है, क्योंकि अब हमें शुद्ध भक्ति करनी है, वरना शुद्ध भक्ति के बिना तो भगवान की प्राप्ति होगी नहीं। केवल भगवान को जान लेना काफी नहीं है, प्राप्त भी करना है उनको, नहीं? हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हमने कृष्ण को जान लिया, उनको प्राप्त करना है, यही है। तब जब अगर तब तक मन असंतुष्ट होना चाहिए, तब तक संतुष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं है, मन विचलित होना चाहिए, वो कृष्ण प्राप्त नहीं हुए। तो वो अब भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या, परमो निर्मत सरानाम सताम, ये शुद्ध भक्ति सबसे पहला लक्षण है शुद्ध भक्ति का। कि शुद्ध भक्ति कौन कर सकता है, परमो निर्मत सरानाम सताम, शुद्ध भक्ति वो है, शुद्ध भक्त वो है जो अपने हृदय में निर्मत सरानाम सताम है। निर्मत सरानाम सताम मतलब जो द्वेष छोड़ देता है। तो शुद्ध भक्ति का एकमात्र लक्षण क्या है, वैसे तो कई चीजें शुद्ध भक्ति में, मगर अगर हम शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं तो हमें द्वेष छोड़ना पड़ेगा, तब वो शुद्ध भक्ति कह सकते हैं उसको, या द्वेष छोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा तब हमारी भक्ति शुद्ध भक्ति है। अगर हम द्वेष नहीं छोड़ेंगे, द्वेष छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति क्या क्या हो जाएगी, शुद्ध नहीं होगी, अशुद्ध बदल जाए बन जाएगी। निर्मत सरानाम सताम, वो भक्ति जिसमें द्वेष की भावना नहीं है। अब द्वेष क्या है, खैर ये प्रश्न आता है सामने। सो कुछ लोग कहते हैं कि द्वेष मतलब जलन करना दूसरों से, ठीक है वो भी ठीक ही है, इसे जलन करना, या क्यों द्वेष का मतलब, या कुछ लोग कहते हैं कि द्वेष मतलब अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे जलन करना, नहीं मतलब द्वेष में क्या होता है कि चलो आपके पास तो कुछ चीज नहीं है, उसके पास है तो आपको लगेगा उसके पास भी क्यों है, ये द्वेष है। कोई और आगे बढ़ रहा है आपसे तो आपको लगेगा वो क्यों बढ़ रहा है, चाहे आप बढ़ नहीं सकते मगर वो भी नहीं बढ़ेगा, उसको द्वेष कहते हैं। उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब आपके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास गाड़ी है तो ठीक है, उसने कमा के खरीद ली तो आपको क्या प्रॉब्लम है, मगर आपको लगेगा नहीं मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं होनी चाहिए, उसके पास कैसे है, तो द्वेष ये करवाता है। तो ठीक है ये भी द्वेष है, मगर असली में द्वेष क्या है, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, ये सब तो संसारी द्वेष की बात हो रही है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, मगर यहां पर क्या कह रहे हैं, शुद्ध भक्ति वो है जिसमें द्वेष की भावना छोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। तो द्वेष क्या होता है, द्वेष एक्चुअली हमें किससे द्वेष है, भगवान से द्वेष है, प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हम कह रहे हैं कृष्णा आपको आनंद आ रहा है मुझे क्यों नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा तो आपको भी नहीं आना चाहिए, ये द्वेष ही है ना, कृष्ण को आनंद आ रहा है हम कह रहे हैं नहीं मुझे तो आ नहीं रहा आपको भी क्यों आ रहा है, तो ये द्वेष होता है, इसलिए मैं आपकी भक्ति नहीं करूंगा, आपकी सेवा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको आनंद नहीं देना चाहता, ये द्वेष हो गया एक तरह से। तो ये इस द्वेष की भावना से मुक्त होते हैं, उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं भक्त लोग, मतलब कृष्ण को आनंद देने का प्रयास ही द्वेष की भावना छोड़ना है पहली, और दूसरा भगवान के भक्त दूसरे भक्तों से भी द्वेष नहीं करते, दूसरे भक्तों से द्वेष नहीं करते, वो तो हमेशा ही कामना करते हैं कि दूसरे भक्त हैं वो और आगे बढ़े भगवान को प्राप्त कर सके। और सदैव दूसरों के हृदय में भी, दूसरों को भी भगवान का अंश देखना, वो भी एक्चुअली द्वेष भावना, द्वेष रहित है। द्वेष का मतलब ये भी होता है कि कृष्ण को केवल मंदिर में देखना और कृष्ण को सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में नहीं देखना, द्वेषी व्यक्ति को नहीं समझ आएगा, द्वेषी व्यक्ति होगा वो कहेगा हाँ कृष्ण यहां पर है, बस प्रणाम करेगा, बाकी जितने भी लोग हैं उनके हृदय में नहीं है, उनको समझ ही नहीं आएगा, वो द्वेषी व्यक्ति है। मगर जिसमें जिसके हृदय में द्वेष नहीं होता वो कृष्ण को मंदिर में भी देखता है और प्लस सबके हृदय में भी देखता है, तभी द्वेष खत्म हो सकता है, वरना द्वेष खत्म नहीं होगा कभी भी। अगर आप हर व्यक्ति को भगवान का अंश समझेंगे, सब व्यक्ति चाहे भोगी हो चाहे भक्त हो सब कृष्ण के दास हैं, इस तरह से समझना चाहिए। अगर द्वेष से मुक्त होना है तो इस तरह हमें अपनी बुद्धि करनी पड़ेगी कि सभी कृष्ण के दास हैं, चाहे भोगी चाहे भक्त, भोगी को नहीं पता भक्त को पता है, इतना फर्क है बस। जब तक हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक द्वेष से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि आप द्वेष से मुक्त हो जाओगे, आप सिर्फ ठीक है भक्तों का तो आदर करना ही है, वो तो भक्त हैं उनका हम आदर कर रहे हैं, ठीक है प्रभु जी आप अच्छे हैं आपको प्रणाम है आप तो महान है, ऐसे कहने से ठीक है अच्छा है शुरुआत तो है, द्वेष खत्म हो जाएगा, मगर वो असली में द्वेष रहित स्थिति नहीं है। द्वेष को हटाना है तो यही करना पड़ेगा, आपको उस व्यक्ति को नहीं देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति भगवान से, भगवान का अंश है। जब तक कृष्ण से उसको नहीं जोड़ोगे तब तक द्वेष नहीं खत्म होगा। हम द्वेष के कारण ही भगवान को और आत्मा को अलग कर देते हैं। नहीं, द्वेष के कारण ही होता है, ठीक है? नहीं ठीक है, मैं बता रहा था ना द्वेष क्या है। द्वेष है कि मेरे पास नहीं तो उसके पास भी क्यों होगी चीज। तो भगवान के सारे अंश हैं और हम सोचते हैं कि तो हम जब लोगों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो हम सोचते हैं कि वो भगवान का सब कुछ है। नहीं, भगवान का सब कुछ नहीं हो सकता। तो हम भगवान को भूल जाते हैं और सारी चीजें देखने लगते हैं, मगर ये भूल जाते हैं किसका है। तो ये भूल जाना कि सब कुछ भगवान का है, सारे जीव भगवान के अंश हैं, वो ही द्वेष है। द्वेष को हटाने का एक ही तरीका, यही तरीका है कि सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी समझो, सब सारे आत्माओं को भगवान का अंश समझो, तब द्वेष हटेगा। तो ये शुद्ध भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति का प्रयास है। हम लोग द्वेष हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक द्वेष हटाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती, वो अशुद्ध भक्ति है। तो क्या प्रयास करना है हमें कि हम सभी को भगवान का अंश देखें और सारी चीजें भगवान की प्रॉपर्टी देखें। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत आम जगत तेना ते तेना भुंजिता मांगता कस्य सुधनम। अगर द्वेष से मुक्त होना है तो ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, ये पालन करो। बस जो ईशोपनिषद का पहला श्लोक पालन नहीं करता वो द्वेषी है। और पहला श्लोक क्या है द्वेष से मुक्त होना है तो? पहला श्लोक क्या ईशोपनिषद का? ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये पूरा संसार, सब लोग इसमें, ये भगवान का, भगवान सब में वास करते हैं। इदम सर्वम यत् किंचित जगत आम जगत, और जो भी कुछ है संसार में, जो देख रहे हो नहीं देख रहे, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। भगवान के भोगने के लिए, हमारे लिए नहीं है। यह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ चीज देख रहे हो और देख के आप ये भूल गए कि भगवान का है तो हम द्वेषी हैं, द्वेष आ जाएगा हृदय में, कृष्ण से द्वेष है वो, और वो फिर शुद्ध भक्ति से बाहर हो गए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जहां देखे देखा है ब्रजेन नंदन। जो महान भक्त होते हैं वो जहां भी देखते हैं उनको कृष्णा दिखाई देते हैं। किसी भी वस्तु को देखेंगे उनको कृष्ण का स्मरण आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण से द्वेष नहीं है। नहीं, द्वेष नहीं है। तो इसीलिए वो लोग समझ सकते हैं वो सब कुछ कृष्ण, उनको ध्यान रहता है हमेशा, हम भूल जाते हैं। और जब द्वेष ही होगा तो प्रेम कैसे मिल सकता है? नहीं, अगर द्वेष के साथ भक्ति करोगे तो प्रेम कैसे मिल जाएगा? संभव ही नहीं है। तो ये तो हम शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। अगर आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे तो प्रेम की संभावना है? अगर मैं किसी से द्वेष करता हूं तो उससे प्रेम कर सकता हूं? कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मान लीजिए आप किसी से द्वेष करते हो और आपसे आपसे मैं आके पूछू तुम उसको प्रेम करते हो? कहते हाँ, प्रेम भी करता हूं द्वेष भी करता हूं। ये संभव ही नहीं है, गलत बात है। तो द्वेष से तो मुक्त होना ही पड़ेगा, और वही शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति मतलब, शुद्धता मतलब होता है द्वेष रहित होना, द्वेष को हटाने का प्रयास करना और फिर भक्ति करना, वो शुद्ध भक्ति है। ये शुद्ध भक्ति का प्रयास है। तो इसलिए भागवतम में परमो निरंतर नाम सताम, एक्चुअली रूपा गोस्वामी भी अपने ग्रंथ उपदेश अमृता में ही लिखते हैं कि जितनी ज्यादा द्वेष होता है उतनी ज्यादा उसके अनुसार, जितना कम द्वेष होता है जीव में उसके अनुसार उसकी भक्ति का स्तर होता है, उसी के अनुसार उसकी भक्ति का स्तर होता है। तो जो बहुत द्वेषी होता है वो कनिष्ठ भक्त है, जिसमें कम द्वेष हो गया वो मध्यम, जिसमें कोई द्वेष नहीं है उत्तम। हृदय इप्सिता, हृदय या इप्सिता हृदय शून्य, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, तो उत्तम हो गया। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि कनिष्ठ स्मरण ही नहीं रख पाता कि सब कुछ भगवान का है और भगवान का अंश है। मध्यम स्मरण रख सकता है कभी कभी, कभी कभी भूल जाता है, मोस्टली उसको स्मरण रहता है, मैं कहा भूल भी आता है। उत्तम कभी भी नहीं भूलेगा, बल्कि वो जो भी चीज देखेगा उसको सीधा कृष्ण का स्मरण आएगा वो देखकर। बस यही फर्क है कनिष्ठ मध्यम उत्तम। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मध्यम भक्त वह जो दीक्षित है, ऐसे भी कहा जाता है कि कनिष्ठ भक्त वो है जो दीक्षित नहीं है, मध्यम भक्त वो है जो दीक्षित है, ये भी ठीक है, ऐसा भी रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, मगर उसका मतलब समझना चाहिए। मतलब ये है उसका, मतलब ये है कि मैंने कल बताया था दीक्षा का मतलब ये है ज्ञान शिक्षा। तो अगर बिना शिक्षा के दीक्षा का कोई मतलब नहीं है, नहीं जैसे मान लीजिए आप रथ यात्रा में गए, इतने सारे दीक्षित भक्त बाहर का खा रहे थे, देखा था कचौड़ी समोसे पूरी खा रहे, तो वो दीक्षित है या अदीक्षित है? वो दीक्षित होते हुए भी अदीक्षित है, दीक्षा से बाहर हो गए, क्योंकि जहां कृष्णा किसी को स्वीकार कर सकते हैं वहां रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर दीक्षा के समय भगवान ने स्वीकार कर लिया उसको, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, उसके बाद क्या है, कृष्ण होइला आत्मसम, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, उसके बाद एक लाइन है और कृष्ण कहिला आत्मसम, कृष्ण दीक्षा के समय स्वीकार कर लेते हैं उसको दीक्षा के समय कि ठीक है ये मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, गुड, मेरा दास बनने लायक है, मैं इसको अपनी लिस्ट में रख लेता हूं नाम में। मगर अगर कृष्ण की आज्ञा पालन करना बंद कर दो, शिक्षा पालन करना बंद कर दो, तो निकाल देंगे कृष्णा, कृष्ण कहेंगे ठीक है मैंने स्वीकार कर दिया। अगर आप स्कूल में एडमिशन ले लो तो क्या निकाल नहीं सकता कोई आपको बाहर है? तो अगर स्कूल की बात नहीं मानोगे तो निकाल देंगे, और क्या, वो जरूर मतलब निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसमें क्या है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने दीक्षा ले ली तो कृष्णा तुम मुझे निकाल कैसे रहे हो, मैंने दीक्षा ली रखी है, ऐसा कोई ऐसा नहीं कह सकते आप लोग। सो वो लोग जो बाहर के खा रहे हैं दीक्षित लोग, वो कृष्ण ने उनको त्याग दिया होगा, कृष्ण को त्याग देते हैं, उनकी भक्ति क्यों स्वीकार करेंगे भगवान? नहीं, वो भगवान की छोटी सी बात नहीं मान सकते भूख के कारण, अगर भूख भी लग रही है तो क्यों खा रहे हैं, सहले भोगी लोगों के हाथ का खाने का कोई मतलब ही नहीं है, चैतन्य महाप्रभु त्याग देते हैं उसको। सो वेल द पॉइंट इज, ये समझना चाहिए। तो दीक्षा का मतलब ये भी होता है कि मध्यम अधिकारी वो है, मध्यम भक्त वो है जो जिसने दीक्षा ले ली, कनिष्ठ वो है जिसने दीक्षा नहीं ली, ऐसे भी बोला जाता है। मगर वो इसलिए बोला जाता है ये मानकर कि जो दीक्षा ले रहा है वो शिक्षा जरूर पालन करेगा, ये मान के बोला जाता है, क्योंकि जो शिक्षा पालन नहीं कर रहा वो तो दीक्षित है ही नहीं। तो यहां पर जो रूपा गोस्वामी दीक्षा की बात कर रहे हैं वो शिक्षा वाली दीक्षा है, उसको उसका या तो उसका नाम दे लीजिए शिक्षा दीक्षा। और दूसरी दीक्षा कौन सी होती है? दूसरी होती है स्टैंप दीक्षा, स्टैंप वाली दीक्षा, समझ रहे हो ना, स्टैंप वाली, बस गए नाम ले लिया कंठी ले ली, हां आज से मैं ये दास हूं आगे घर और घर आ गए। और कई भक्तों ने माला करना छोड़ दी, 16 माला, उसने दीक्षा क्या ली है? फिर कृष्ण त्याग देंगे उसको, क्योंकि उसने, कई भक्त हैं जो छोड़ देते हैं, कई भक्त 16 माला करना ही छोड़ देते हैं। और एक 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 भक्त फरीदाबाद में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो तो जैसे शीला प्रभुपाद ने कहा छूट जाए तो बाद में कर लेना, कभी प्रभुपाद ने बोला अगर छूट जाए बाई चांस तो बाद में कर लेना, तो उसने क्या किया, उसने वो मेरे पास आया, मैंने कहा जप कर रहे हो ना? हाँ जप कर रहा हूं। तो मैं जो बहुत सारी जप करनी पड़ती है, मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैंने 3 महीने जप नहीं किया। मैं कहा पूरा रिकॉर्ड रख रखा है, मैं कंप्लीट करूंगा अभी 3 महीने का जप, अब वो कंप्लीट करेगा, मतलब उसे 3 महीने कितने कितने दिन, मतलब 90 दिन इंटू 16 वो उसने रख लिया, करता रहा। ये तो बहाना है, तो नहीं, ये बेवकूफी है, प्रभुपाद ऐसा नहीं कह रहे, बाई चांस छूट जाए तो अगले दिन कर लो, मगर छोड़ नहीं सकते कभी भी। तो जो दीक्षित भक्त छोड़ रहा है माला, वो दीक्षित नहीं है, वो कृष्ण त्याग देंगे उसको, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि नाम लेना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और बहुत सारी चीजें जैसे यही बाहर का खाना, आपको क्या हो गया एक बार बाहर खा लिया तो कौन सा मर रहे हैं, वो कृष्णा त्याग देंगे आपको। मरना आधा अच्छा है, मगर बिना भोग लगाए मत खाओ। सो फल और दूध खा सकते हैं बाहर का, फल और दूध की चीजें बनी हुई, मगर वैसे नहीं लेना चाहिए। हाँ फल और दूध नहीं, नहीं वो तो भोग लगाना चाहिए, मगर जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग में हो तो ट्रैवलिंग में फल लेके अपने मन में भी लगा दो, जैसे दूध लेके अपने मन में करके ले सकते हो, मगर बाहर का अन्न नहीं ले सकते कभी भी। तो ट्रैवलिंग में कब क्या करोगे, तो जो अन्न नहीं है वो आप बाहर से खरीद के मन में करके ले सकते हो, जैसे मूंगफली हो गई, दही हो गया, दूध हो गए, ये अन्न नहीं है ना, तो ये ले सकते हो, मगर बाकी अन्न तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा अन्न शुद्धि मना शुद्धि, अन्न शुद्ध है तो मन शुद्ध है। सो मैं उदाहरण दे रहा हूं ये, तो क्यों समझा रहा हूं ये सब मैं, क्योंकि क्योंकि जो अब हम बात करेंगे, कनिष्ठ कौन है जिसने दीक्षा नहीं ली, मध्यम कौन है जिसने शिक्षा दीक्षा ली है। जब मैं पूछ रहा हूं तो थोड़ी ध्यान से जवाब देना चाहिए, जवाब कुछ भी बोल सकते हो, हजार जवाब है नहीं। अब मैं पूछूं भक्ति है तो आप बोल सकते हो प्रेम है, अब अभी बोल सकते हो भक्ति क्या है, चैतन्य महाप्रभु को खुश करना, कृष्ण खुश करना, राधा रानी खुश करना, सभी सही है, मगर उत्तर होना चाहिए जो कि कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट समझते हो है? नहीं, जिस चीज पर जो चर्चा की जा रही है उसके अनुसार उत्तर देना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारे उत्तर होते हैं। तो हाँ, तो अब यह समझ आएगा, शिक्षा दीक्षा, मध्यम अधिकारी वह जिसने शिक्षा दीक्षा ली है, तो शिक्षा पालन कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो दीक्षित नहीं है, कृष्णा मना कर रहे। और शिक्षा क्या है, शिक्षा यह है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए। शिक्षा यह है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो द्वेष रहित हो जाओगे, और शिक्षा यह है कि अगर द्वेष रहित होगे तभी तुम्हारी भक्ति शुद्ध भक्ति होगी, और शिक्षा यह है कि शुद्ध भक्ति से ही प्रेम मिलता है, अशुद्ध भक्ति से हृदय और अशुद्ध हो जाता है। तो यह शिक्षा जो पालन कर रहा है ठीक है, जो नहीं कर रहा वो बेकार है। सो हम लोगों को इतना इतना ज्यादा उत्कंठित नहीं होना चाहिए, दीक्षा लूंगा दीक्षा लूंगा दीक्षा लूंगा दीक्षा लूंगा, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाते हैं, दीक्षा 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 लेने का प्रयास मत करो, शिक्षा पालन करने का प्रयास करो, क्योंकि दीक्षा लेके आपको शायद अहंकार भी आ जाए, आपको लगने लगेगा मुझे दीक्षा हो गई अब मैं भागता हूं, नहीं ऐसा भी हो जाता है एक्चुअली, कई बार दीक्षा लेके भक्ति खत्म ही हो जाती है, क्योंकि अपराध होने लगते हैं बहुत सारे, नहीं अगर आप अभी छोड़ दोगे तो शायद इतना अपराध नहीं हो, मगर दीक्षा लेके आपने माला करना छोड़ दी तो सीधा नरक है, कोई नहीं बजा सकता, क्योंकि आपने अग्नि वायु सूर्य देवी देवताओं के सामने कृष्ण के सामने गुरु के सामने आपने बोल दिया और फिर नहीं कर रहे तो खत्म हो, फिर कोई नहीं बजा सकता दुनिया में। सो नहीं, तो अगर आप इतना उत्साहित हो दीक्षा पालन करने के लिए तो शिक्षा पालन करने का भी उत्साहित हो जाओ, वरना दीक्षा पालन दीक्षा कर लेने के बाद कुछ होगा ही नहीं, फिर तो और अपराध में फंस जाओगे। कई लोग तो दीक्षा लेके छोड़ ही देते हैं, सब कुछ करना छोड़ देते हैं, तो मुझे क्यों छोड़ दे तुम नरक में चले जाओगे, कहते हैं ठीक है यार अब हो नहीं रहा, ये भी आता है, क्योंकि दीक्षा मिल गया आराम से तो फिर अब मिलने के बाद उसकी मूल्यता नहीं रह जाती ना, फिर तो फिर ठीक है छूट जाता है तो चलो ठीक है क्या फर्क पड़ रहा है। तो अगर दीक्षा लेंगे जैसे जब छूटने लगती हैं चीजें, मान लीजिए आपने दीक्षा ले लिया, आपने छोड़ दिया माला करना एक दिन दो दिन तीन दिन, तो आपके मन में आ जाएगा कि कुछ हुआ तो नहीं, मरा तो नहीं मैं, सब चल रहा है, कोई दुख भी नहीं आ रहा, सब ठीक है, तो वो मन में चला जाएगा एक विचार, तो आपका डर खत्म हो जाएगा एक, नहीं फिर धीरे 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 थोड़े दिन में दोबारा छोड़ दोगे, कुछ नहीं हो रहा, चलो ठीक है और दोबारा छोड़ सकते हैं, फिर नहीं हो रहा, फिर दोबारा, फिर धीरे धीरे और छूटता रहेगा, छूटता रहेगा, छूटता रहेगा, फिर खत्म। सो दीक्षा लेने का इतना प्रयास मत करो, दीक्षा मतलब शिक्षा, शिक्षा पालन करो, जो भागवतम कह रही है वो पालन करो, वही दीक्षित है, वही दीक्षित है, दैट्स इट। ऐसे हम लोग हैं, हम लोग जो अदीक्षित होते हैं उनके हाथ का नहीं लेते बना हुआ खाना, मगर जो आप बना रहे हो हम ले लेते हैं, आपको ऐसे क्यों है? क्योंकि हमारे आपसे आप दीक्षित हो, क्योंकि आप शिक्षा पालन करने का प्रयास कर रहे हो। मगर कितने सारे लोग दीक्षा लेते हैं वो पालन नहीं करते, जैसे तो हम नहीं लेते उनके हाथ। तो ये बुद्धि होनी चाहिए, हाँ ये दृष्टि होनी चाहिए। तो कहीं दीक्षित भक्त हैं, आप सोचोगे यार इसको तो हमें रिस्पेक्ट देनी है तो दीक्षित है, मगर पालन नहीं कर रहा तो कोई कोई बोलने की जरूरत नहीं है उसको, फिर वो दीक्षित नहीं है, उसे पहले उससे अच्छी तरह बोलने की, उसे बोले ही बोलने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं उसे उसको आदर दो, मतलब ऐसा भी नहीं कि उसका निरादर कर दो, मगर आदर देने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो है ही नहीं दीक्षित, और मतलब अगर वो पालन नहीं कर रहा सही से, तो क्यों आदर दें उसको स्पेशली, क्योंकि वो अधिकार ही नहीं है उसका, नहीं। सो ये थोड़ा दिमाग होना चाहिए, इसीलिए यह शब्द बहुत जरूरी है। भक्त क्या है? निर्मत सरानाम सताम, यह शुद्ध भक्ति है, ये शब्द याद कर लो। परमम निर्मत सरानाम सताम, सताम मतलब होता है भक्त, शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्ति का प्रयास है, शुद्ध भक्त का प्रयास है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति मतलब वो भक्ति जो द्वेष रहित है। निर्मत सरानाम मतलब होता है द्वेष। परमो निर्मत सरानाम मतलब जो पूरी तरह द्वेष हटाने का प्रयास कर रहे हैं अपने अपने हृदय में से। और द्वेष हटाने का मतलब कि सारी चीजों को भगवान का भगवान की प्रॉपर्टी के रूप में देखना और उनकी सेवा में लगाना, उनका समझना, उनके लिए समझना, उनके आनंद के लिए समझना, यही एक्चुअली द्वेष से रहित होने का रास्ता है। सब कुछ भगवान का, सारे जीव भगवान के अंश हैं। हम कुछ भी देखें हमें भगवान का स्मरण आना चाहिए, वरना गलत है। और दूसरी लाइन ईशोपनिषद का पहला मंत्र, वो टेक्निक है द्वेष से रहित होने की। और दूसरी लाइन क्या है? ईशावासमिदं सर्वमिति चिन्तयेताम जगत, सब कुछ भगवान का है, ठीक है पता लग गया, मगर करना क्या है? अब कई लोग कहते हैं सब कुछ भगवान का है, आप जाओगे किसी भोगी से पूछोगे तो कहेगा हां सब कुछ भगवान का है, भगवान का है, सब कुछ सही है, अपने लिए इस्तेमाल करता रहेगा। नहीं, ऐसा भी हम कर सकते हैं, जैसे कई लोग प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद लेके कहते हैं वो बड़ा अच्छा बना है, जरूर कृष्ण ने स्वीकार किया होगा, तो बहुत सुंदर प्रसाद है, सुंदर बना है आज तो बहुत, और खाते रहते हैं, सुंदर बना है, बहुत सुंदर प्रसाद है। द पॉइंट इज बेवकूफी है, वो सुंदर बनाया तो है प्रसाद भी, मगर अब कृष्ण के लिए है, कृष्ण ने ले लिया तब भी कृष्ण के लिए, हमारे लिए नहीं है वो। ऐसे नहीं कृष्ण ने ले लिया तो हम ले लेंगे, अब वो भगवान के भक्तों के लिए। कृष्ण ले लिया तो कृष्णा वो प्रसाद देंगे, तो वो प्रभुपाद के लिए, भक्ति संता के लिए, इन लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो प्रसाद किसके लिए होता है? वो भक्तों के लिए है, कृपा भगवान अपने भक्तों को देते हैं। मगर हम लोग कौन है? हम लोग भक्त हैं या नहीं है? हम लोग भक्त नहीं है, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, मगर भक्त हम साधना भक्त हैं, प्रेम प्रेम प्रेमी भक्त नहीं है। जिनमें प्रेम होता है वो असली भक्त होते हैं। सो इस तरह से ये समझना जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि ये समझ कर कि सब कुछ भगवान का है, क्या करना है हमें? तेना त्यक्तेना भुंजिंता, उतना ही लो जितना जरूरी है जीने के लिए, बस। भुंजिंता, भुंजिंता समझते हो? भुंजिंता मतलब होता है लेना, उतना लो जितना बिल्कुल जरूरी है। तेना त्यक्तेना भुंजिंता, मां गृधा का सस्वितनम, ये समझ कर कि ये सब कुछ भगवान का है, उतना ही लो जितना जीने के लिए जरूरी है, आनंद के लिए मत लो, जीने के लिए चीजें इस्तेमाल करो इस संसार में। शरीर नहीं होगा तो साधना कैसे करेंगे? आनंद के लिए मत लो इस संसार की चीजें, उतनी लिमिट में ले लो। समझ गए? नहीं समझ गए? तब अगर कोई ऐसा कर रहा है तब हम कहेंगे कि वो द्वेषी नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो वो द्वेषी है, चाहे वो अच्छी तरह बात कर ले, चाहे वो बहुत सॉफ्टली स्वीटली बोल ले आपसे, प्रभु जी कैसे हो, ऐसे बोल ले, यार बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, कोई भी द्वेष नहीं है, बट वो द्वेषी है, दैट्स इट। इसलिए द्वेष की परिभाषा ही है, मैं द्वेष की परिभाषा बता रहा हूं, समझ रहे हो या नहीं, ये द्वेष की परिभाषा है। सो ये हमें प्रयास करना चाहिए द्वेष से मुक्त होने का, तब हमारे भक्ति का प्रयास शुद्ध प्रयास हो जाएगा, तब भगवान का नाम समझ आने लगेगा, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा, वरना हम करते रहेंगे भक्ति तो अशुद्ध भक्ति से हृदय और अशुद्ध हो जाएगा। तो आप देखोगे आप भक्ति कर रहे हो और अगर आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं कभी कभी हम चैंटिंग करते हैं मन और ही डिस्टर्ब हो जाता है, इतना डिस्टर्ब हो जाता है फिर माला रख के सोना पड़ता है, थक गया यार, थक जाते हैं ना कभी कभी इतना, क्योंकि मन इतना डिस्टर्ब हो गया चैंटिंग करते 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 कि थक जाते हैं, थकावट हो जाती है कभी कभी, नहीं असली में थक जाता है व्यक्ति, थकते नहीं थकते हैं कभी कभी, तो मन कहता है सो जाओ, इसलिए नींद आती है, नींद आती इसलिए क्योंकि मन थक जाता है। क्योंकि कोई व्यक्ति कभी संसार में खाना खाते वक्त सोया, सोयो कभी? कभी नहीं सोचा, कितनी नींद आ रही हो खाना खाते वक्त कभी सोएगो नहीं, और खैर सेक्स करते वक्त तो कभी नहीं सोगे, वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें आनंद आ रहा है, उसमें आनंद आएगा तो उसमें कभी नींद आ ही नहीं सकती, मगर जप में नींद आ जाएगी, क्योंकि हमें उसमें आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग द्वेष करते हैं कृष्ण से। पॉइंट ये, हमने कभी ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं ली, हम अभ्यास ही नहीं कर रहे सब कुछ देखने का और उतना लेने का जितना जरूरी है, समझे नहीं समझे? तो अगर कितने ही फ्रेश हो गए तब भी नींद आ जाएगी जब करते वक्त, और कितने थके हो गए खाना भी खा लोगे तब भी नींद नहीं आएगी, बल्कि फ्रेश हो जाओगे, नहीं? तो ये हमारी हालत है, और वो क्यों है, वो इसलिए क्योंकि हम अशुद्ध भक्ति करते हैं, हम द्वेष हटाने का प्रयास नहीं करते। तो अशुद्ध भक्ति करोगे तो यही होगा, हमेशा हमेशा थके नींद में पड़े रहेंगे, कभी फ्रेश नहीं रहेंगे भगवान की भक्ति के लिए, और नाम में तो मन लगेगा ही नहीं, नाम में मन लगना बहुत बड़ी बात है। सो आज से भक्ति का प्रयास शुद्ध प्रयास करो, अशुद्ध प्रयास मत करो। और शुद्ध प्रयास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप हरे कृष्ण 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 हरे राम ऐसे नहीं कर सकते आप, कई लोग करते हैं, उससे कुछ भी नहीं हो, उससे क्या हो जाएगा, कोई पागलों की तरह जप करने थोड़े ना कोई भगवान प्रकट हो जाएंगे आपके सामने कि बहुत हिल रहा है, कई मंदिरों में करते हैं, हिलते रहते हैं तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे उसके हिलने से, क्या भागवत कह रहे हिलो तो मैं खुश हूं, ऐसा नहीं है। वो शुद्ध नाम लेने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको नाम लेते वक्त ही, नाम लेते वक्त चलो ध्यान तो लगाना ही है भगवान के नाम पे, मतलब ऑब्वियसली भगवान के नाम जब जब कर रहे हो तो ये सब तो ध्यान होना ही चाहिए कि मेरा माइंड भगवान के नाम पे लगे भागे ना, प्लस भगवान को सुनाने के लिए कर रहा हूं, वो तो चलो ठीक है वो तो करना ही है, मगर अगर द्वेष से मुक्त होना है तो जब भगवान का नाम नहीं ले रहे तब अभ्यास करना है, जब नाम नहीं ले रहे तब भी अभ्यास करना है, तभी अभ्यास करना है कि जब भी देख रहे हो सब कुछ समझो कि कृष्ण का है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे मैं कल बता रहा टॉम, टॉम का क्या आपके फादर टॉम, पर टॉम का नहीं बता रहा था मैं, तो टॉम, तो अगर आप टॉम से द्वेष करते हो और अब टॉम 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 बोलते रहो तो क्या प्रेम आ जाएगा, हो जाएगा कुछ? कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपको टॉम के नाम में इंटरेस्ट लाना है, अगर आपको ऐसे जप करना है कि टॉम 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 प्रेम से, तो क्या करना पड़ेगा, तो उससे, हाँ तो उससे उसके जानना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, नहीं आपको नहीं, नहीं मैं उससे मिलूंगा नहीं, मैं तो पूरे दिन टॉम 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 जप करता रहूंगा, तो करते रहो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। उसी तरह अगर आप पूरे दिन कृष्ण 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 भी करते रहो तब भी कुछ नहीं होगा, आप जब कृष्णा आपको कृष्ण नाम थोड़ी देर छोड़ के जब बाकी काम कर रहे हो तो अभ्यास करना पड़ेगा, ये सब देखने का, ऐसे ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है मेरे लिए नहीं है, सब भगवान का अंश, भगवान की प्रॉपर्टी है, तब वो अभ्यास करते रहोगे और फिर नाम लोगे तब भगवान प्रकट होंगे, समझ गए नहीं समझ गए? तो वो भी अभ्यास जरूरी है, ऐसा नहीं कि भक्ति मतलब केवल जब मैं नाम ले रहा हूं तभी भक्ति है, बाकी टाइम मेरा अपना काम है, वो भक्ति नहीं है। भक्त के जीवन में सब पूरे जीवन ही भक्ति है, चाहे वो काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। तो काम करते वक्त भी वो समझ रहा है कि सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए, मेरे लिए नहीं है, मेरे भोग के लिए नहीं है, मुझे आनंद नहीं लेना है इसमें। तो देन देयर बी प्रॉब्लम, यू नो, नहीं। तो सत्यवादी वो नहीं होता जो सिर्फ सच बोलता है, सत्यवादी वो होता है जो झूठ नहीं बोलता, वो भी होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सत्यवादी वो है, कोई कोई अगर एक घंटा सच बोल ले तो क्या सत्यवादी बन जाएगा और बाकी टाइम झूठ बोले जा रहे हैं? तब बोलोगे तुम सत्यवादी हो? हां मैं सत्यवादी हूं, मैं सुबह 7 से 8 कोई झूठ नहीं बोलता। वही चैंटिंग है वक्त, यही होता है ना, सुबह सुबह उठ के सुबह 5 से 7 तक कोई भी झूठ नहीं बोलता, बाकी टाइम मैं जो भी कर रहा हूं, मेरा बिजनेस है उसमें क्या है, बाकी मेरा काम है, मैं तो जो भी कर रहा हूं कर रहा हूं, अपने घर में हूं, घर में जो भी मैं झूठ वूठ बोल रहा हूं, तो मैं वो सत्यवादी नहीं है। तो केवल 2 घंटे की चैंटिंग से आप भगवान को खुश नहीं कर सकते, केवल वो करने से नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, चैंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, मगर आप वो करोगे बाकी टाइम आप अपने मन से पागलों की तरह चलते रहोगे तो फिर कैसे हो जाएगा? तो बाकी समय भी हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि सब कुछ कृष्ण का है, मेरे आनंद के लिए नहीं है। किसके आनंद के लिए? कृष्ण के आनंद के लिए। मैं उतना ही लूंगा जितना जीने के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। आपने 1 सेकंड भी अपना आनंद ले लिया तो वो द्वेष हो गया, आपको नाम में मन नहीं लगेगा। आप देख लेना, आप यहां पे बैठे बैठे सब टेस्ट कर लो, अपन नाम में मन लग रहा है नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपना आनंद ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब 1 सेकंड भी ले लिया तब भी बहुत बड़ी बात हो गई। सो ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि आप अभी से आप 24 घंटे ही भगवान को आनंद दे सकते हो, वो तो प्रेमा भक्ति है। अभी हम साधक हैं तो हम प्रयास तो कर ही सकते हैं, एटलीस्ट जितना टाइम हो सके सावधान तो रह ही सकते हैं कि हम अपना आनंद नहीं लें, शुद्ध प्रयास कर सकते हैं। तो शुद्ध प्रयास को ही शुद्ध भक्ति कहते हैं, हमारी जितनी शक्ति है उतना तो प्रयास कर ही लें। सो ये है शुद्ध, ये है शुद्ध भक्ति। यार टाइम भी हो रहा है, ठीक है, मैं इसके बारे में चर्चा शाम को करूंगा शुद्ध भक्ति के बारे में। तो शुद्ध भक्ति के बारे में बताया, अब शुद्ध भक्ति के प्रभाव क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, उससे होगा क्या? वैसे तो शुद्ध भक्ति से प्रेम मिलेगा, मगर उससे पहले और भी चीजें प्रभाव होंगे भक्ति के, वो भी बता रहे हैं, वो मैं शाम को डिस्कस कर लूंगा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो ठीक है, पूछ सकते हैं। दिस इज गुड, 1 पॉइंट इज गुड टू एक्सप्लेन, समझ गए? ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।